अंक दो, माधव अमल से बिस्तर में ही रहने को कहता है क्योंकि बाहर निकलने से उसकी हालत बिगड़ गई है। अमल को डर है कि अब वह फकीर को नहीं देख पाएगा जो उसे खिड़की पर न देखकर चला जाएगा। जब माधव अमल से फकीर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि फकीर उसे विचित्र देशों के बारे में बहुत सी बातें बताता है जहां वह गया है। फकीर के आने का समय हो गया है और गफ्फार फकीर के भेष में अमल से मिलने आता है। अमल गफ्फार से अपने बिस्तर के पास आने को कहता है। गफ्फार उसे बताता है कि वह अभी अभी तोतों के अद्भुत द्वीप से लौटा है। गफ्फार अमल को बताता है कि वह वहां पैदल ही गया था। गफ्फार की ऐसी बातें सुनकर माधव को गुस्सा आता है। उसे इस बात का दुख है कि अमल उससे दूर होता जा रहा है। गफ्फार अमल को बताता है कि तोतों के द्वीप पर मानव नहीं रहते, वहां केवल चिड़िया रहती है जो न बोल सकती है न चल सकती है, वह केवल गाती है और उड़ती है। द्वीप पर चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पर झरने हैं और वे पिघले हुए हीरों के समान दिखाई देते हैं। गफ्फार की कहानी सुनकर अमल एक चिड़िया बनने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसे एक दुविधा है कि उसने दही वाले से यह तय कर लिया है कि वह बड़ा होकर दही बेचेगा। यदि वह तोतों के द्वीप पर चला जाएगा तो वह चिड़ियों के बीच दही नहीं बेच पाएगा। माधव बीच में कहता है कि इससे उसे बड़ा घाटा होगा। अब अमल माधव से दही वाले के बारे में पूछता है तो माधव बताता है कि दही वाला दही का एक बर्तन छोड़ गया है क्योंकि उसे गांव में अपनी भतीजी के विवाह में जाना था। अमल माधव को बताता है कि दही वाले ने अपनी भतीजी का विवाह उसके साथ करने का वादा किया है। वह आगे बताता है कि वह भतीजी सुंदर कपड़ों में एक प्यारी सी दुल्हन दिखाई देगी। प्रातः काल में अपने छोटे छोटे हाथों से काली गाय का दूध दुहेगी और उसे अमल को गर्म दूध पीने को देगी। सायंकाल में वह उसे चंबा और उसके छह भाइयों की कहानियां सुनाएगी। गफ्फार को भी यह सब सुनने में आनंद आता है, लेकिन माधव अमल को डांटता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अब अमल गफ्फार से पूछता है कि क्या राजा ने उसे एक पत्र भेजा है। गफ्फार जवाब देता है कि राजा ने उसे एक पत्र भेजा है, लेकिन वह अभी रास्ते में है। अमल पत्र के आने के सपने देखने लगता है। वह कल्पना करता है कि राजा का डाकिया कंधे पर पत्रों से भरा एक थैला और उल्टे हाथ में एक लांटेन लेकर अकेला पहाड़ियों से नीचे उतर रहा है। वह गन्नों के खेत से गुजरता है और गन्नों के बीच में लुप्त हो जाता है। फिर वह खुले मैदान में होकर गुजरता है, जहाँ झिंगूर छी छी की आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है। इस सब की कल्पना करके अमल अपने अंदर बहुत प्रसन्न होता है। गफ्फार उसे बताता है कि वह राजा से भीख लेने प्रतिदिन जाता है। अमल भी ठीक होकर उसके लिए राजा से भीख लेने की इच्छा प्रकट करता है। अमल बताता है कि जब वह राजा से भीख लेने जाएगा, तो वह दरवाजे पर आवाज लगाएगा। अमल राजा से उसे अपनी डाकिया बनाने की प्रार्थना करेगा, जिससे कि वह घर के अंदर ही रहने से बच जाए। अभी वह घर के अंदर ही बैठना और डाक खाने को देखना पसंद करता है। वह राजा के पत्र का इंतजार करना चाहता है, लेकिन यह सोचता है कि वह उसे पढ़ पाएगा या नहीं। लेकिन गफ्फार उसे यह कहकर सांत्वना देता है कि चाहे वह उसे पढ़ ना पाए, लेकिन वह उस पर अपना नाम देखकर अवश्य प्रसन्न होगा। तब माधव आता है और गफ्फार उसे बताता है कि उसने यह अफवाह सुनी है कि राजा ने अमल और गफ्फार दोनों को संदेश भेजने हेतु उसके घर के सामने डाक खाना स्थापित किया है। मुखिया पंचानन ने राजा से ऐसा करने को कहा है, लेकिन अब माधव गफ्फार से अनुरोध करता है कि इस मामले में वह उसका नाम न ले, नहीं तो राजा उसका सर्वनाश कर देगा। लेकिन गफ्फार अमल को बताता है कि राजा अमल जैसे लड़के और गफ्फार जैसे फकीर से नाराज नहीं होगा। इस बीच में अमल अपनी आंखों के समक्ष कुछ अंधेरा महसूस करता है। उसे सब कुछ एक सपना सा लगता है, लेकिन वह शांत रहना चाहता है। गफ्फार अमल को बताता है कि राजा का पत्र अवश्य आएगा। उसी समय गांव का डॉक्टर आता है और अमल का हालचाल पूछता है। अमल बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है। माधव डॉक्टर से पूछता है कि क्या होगा। डॉक्टर उसे बताता है कि अमल को अधिक समय तक जीवित नहीं रखा जा सकता, उसे मरना नहीं चाहिए। माधव डॉक्टर को आश्वासन देता है कि उसने उसके निर्देशों के अनुसार पूरी सावधानी बरती है। डॉक्टर माधव को सलाह देता है कि वह सामने का दरवाजा बंद कर दे और 2-3 दिन तक किसी को भी अंदर न आने दे। यदि कोई अचानक आता है, तो उसे सामने के दरवाजे से न बुलाकर पीछे के दरवाजे से बुलाया जाए। डॉक्टर माधव से सूर्य के किरणें रोकने के लिए खिड़की बंद करने को कहता है। अमल की आंखें करीब करीब बंद हो रही हैं और माधव महसूस करता है कि वह अमल सो रहा है। उसका चेहरा बताता है कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। डॉक्टर यह कहकर चला जाता है कि वह अमल को बचाने के लिए एक और अधिक शक्तिशाली दवा देकर एक अंतिम प्रयास करेगा। जब मुखिया बोलता है तो गफ्फार उसे धीरे बोलने को कहता है, लेकिन कहता है नहीं तो अमल की नींद में विघ्न पड़ेगा। लेकिन अमल जग जाता है और कहता है कि वह सब कुछ सुन रहा है, दूर की आवाजें भी। मुखिया बताता है कि अमल राजा के एक पत्र का इंतजार कर रहा है, लेकिन माधव कहता है कि लड़का मूर्ख है और उसके शब्दों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। तब मुखिया अमल को एक कोरे कागज का टुकड़ा यह कहते हुए दिखाता है कि वह राजा का पत्र है। अमल मुखिया से पूछता है कि उसमें क्या लिखा है। मुखिया बताता है कि राजा अमल से मिलना चाहता है और उसने पके चावल तैयार करने को कहा है। माधव मुखिया से मजाक न करने को कहता है। अमल को बिगुल की आवाज सुनाई देती है। अमल मुखिया से कहता है कि क्योंकि वह उसे प्यार नहीं करता, वह उसके लिए राजा का पत्र नहीं लाएगा। अब पहरेदार के घंटे की आवाज सुनाई देती है। सायंकाल का तारा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद है। गफ्फार खिड़कियां खोलता है, तभी दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है, लेकिन तभी शोरगुल बंद हो जाता है। बाहर का दरवाजा खुलता है और राजा का दूत कमरे में प्रवेश करता है और राजा के रात्रि में आगमन की घोषणा करता है। वह ये भी घोषणा करता है कि राजा ने लड़के की चिकित्सा के लिए शाही चिकित्सक भेजा है। राजा का चिकित्सक अमल के कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल देता है। अमल बहुत प्रसन्न होता है। अब वह आराम महसूस करता है और कोई दर्द नहीं। अमल राजा के आगमन की प्रतीक्षा करता है। अमल मुखिया से उसके साथ रुकने को कहता है क्योंकि वही राजा का पत्र लाया था। अमल सोचता है कि जब राजा आएगा वह उससे उसे अपना डाकिया नियुक्त करने की प्रार्थना करेगा, जिससे कि वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पत्र बांट सके। अमल शाही चिकित्सक अमल से शांत रहने को कहता है क्योंकि उसे नींद आ रही है। वह मोमबत्ती भी बुझाने को कहता है जिससे कि कमरे में केवल तारों की रोशनी आए। अब सुधा आती है, लेकिन चिकित्सक उसे बताता है कि अमल सो रहा है। सुधा अमल के लिए कुछ फूल लाई है। वह चिकित्सक से अमल के कान में यह कहने को कहती है कि वह उसे भूली नहीं है और अपने वादे के अनुसार वह उससे मिलने आई है। अंक 2 समाप्त।